ओम शांति। आज हम आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी का इस क्लास में एक हाथ की ताली से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर सविता दीदी बचपन से ही ईश्वरीय ज्ञान में हैं। 1975 में आप ईश्वरीय ज्ञान में आए और 1998 में आपने अपना संपूर्ण जीवन बाबा के बेहद यज्ञ में समर्पित किया। जब आप डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे थे उस दौरान आपने राजस्थान के कई स्थानों पर ईश्वरीय सेवाएं की और आदरणीय बड़े दादी जी के स्वास्थ्य सेवाओं में भी आपका विशेष योगदान रहा। आपने अनेक विदेशों में भी जाकर बाबा का ये ईश्वरीय संदेश अनेक आत्माओं तक पहुंचाया और आप महिला विंग की मधुबन कोऑर्डिनेटर के रूप में वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ मधुबन में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं तो राजयोग शिविर भी कराते हैं, अनेक टॉपिक्स पर भी आपकी क्लासेस रहती है, एंगर मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग आदि विषयों पर भी आप क्लासेस कराते रहते हैं और ऐसी ही अनुभव युक्त वाणी से हम सबको भी लाभान्वित करने आए हैं। बहुत सुंदर विषय पर आज हमको क्लास कराने वाले हैं, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी संतुष्टता, उस पर अभी हम सुनेंगे आदरणीय दीदी जी से।
ओम शांति। ओम शांति। अभी हम गीत सुन रहे थे, आप बाबा सदा साथ हैं तो हमें और क्या चाहिए। तो अगर बाबा सदा साथ है तो सदा संतुष्ट है, क्योंकि बाबा मिल गया माना सब कुछ मिल गया। व्यक्ति असंतुष्ट कब होता है? जब उसे अप्राप्ति होती है, यानी जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा तो हम असंतुष्ट होते हैं। और यहाँ तो बाबा मिल गया माना सही है ऐसा, या कहने के लिए ठीक है? क्या कहेंगे बोलिए, प्रैक्टिकल मिल गया। क्योंकि बहुत ऊंची प्राप्तियां बाबा ने हमें कराई हैं। बाबा मिल गया माना बाबा के सब खजाने भी मिल गए, इसलिए कहा अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, कहते ना। तो कोई वस्तु माना जितने भी भाग्य हैं वो सब भाग्य हम बच्चों को बाबा ने जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन ही भाग्यवान बना दिया। अभी त्याग और भाग्य पे मुरलियां चली थी ना काफी, तो बाबा ने कहा मैंने किसी को भाग्य देने में अंतर नहीं रखा, एक द्वारा एक जैसा एक ही समय और एक ही विधि से सबको भाग्य दिया है। लेकिन फिर भी नंबर वार होते हैं और वो नंबर वार होने का कारण उस भाग्य को हम कितना यूज करते हैं, कितना हम उसे आगे बढ़ाते हैं, उस अनुसार फिर वो भाग्य से सौभाग्य, हजार भाग्य, पद्मा पद्म भाग्य। अब मुझे कितना भाग्यवान बनना है उस अनुसार हम अपनी प्राप्तियों को बढ़ाते जाते हैं। अभी भी संडे की मुरली में बाबा ने कहा कोई बहुत साल से ज्ञान में है, कोई दो महीने से ज्ञान में है, तो ये उलाना नहीं दे सकते कि मैं तो दो महीने से ही ज्ञान में आया हूँ। भगवान को उलाना तो दे सकते हैं ना, हम तो लास्ट में आए हैं, अब हम क्या करें? हमारे लिए तो पुरुषार्थ करने की मार्जिन ही नहीं है, असंतुष्ट हो सकते हैं। तो बाबा ने क्या जवाब दिया, कल ही सुनिए ना मुरली। बाबा ने कहा एक सेकंड में सर्व प्राप्तियां, भगवान के पास कमी नहीं है। बाबा ने कहा जो आप आ गए हो उसके अलावा भी दुनिया की सारी आत्माएं आ जाएं तो भी अखुट खजाना है, तो भी कम होने वाला नहीं है। लेने वाले की झोली चाहिए लेने वाला। तो ये हमारे ऊपर है कि हम लास्ट सो फास्ट कितना ले सकते हैं, बाबा ने वो भी हमें वरदान दिया हुआ है। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, फर्स्ट आने की मार्जिन लास्ट वालों को भी है, तो किसी के लिए नहीं रखा। तो सर्व प्राप्तियां हैं हमें, ये हमारी संतुष्टता का आधार है। अगर हम भक्ति में देखते हैं तो भक्ति में भी संतुष्टता के गुण को बहुत श्रेष्ठ गुण माना गया है। वो ऐसे कहते हैं, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन तुरी समान। यानी संतोष को धन माना गया, और अगर संतोष धन है तो उसके आगे और सब धन बेकार हैं, ऐसा भक्ति में माना उन्होंने। संतोषी सदा सुखी होता है, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन दुनिया वाले सोचते हैं कि हम संतुष्ट हो जाएंगे तो हम आलसी हो जाएंगे। संतुष्ट होने का मतलब जो है ठीक है, अब आगे कुछ नहीं चाहिए, अब आगे कुछ नहीं चाहिए तो इसका मतलब हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, वहीं रुक जाएंगे, क्या कहेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न संतुष्टता के ऊपर यही होता है कि अगर हम संतुष्ट हो गए तो हमारी प्रगति खत्म। बोलिए, प्रगति खत्म या आगे बढ़ेंगे? क्योंकि हमारी संतुष्टता का अर्थ अलग है। हम संतुष्ट होने का मतलब ये नहीं कि अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं, हमारे संतुष्ट होने का मतलब है कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो हम श्रेष्ठतम करेंगे, बाबा की श्रीमत प्रमाण करेंगे, पर उसका जो परिणाम आएगा उससे हम संतुष्ट हैं, क्योंकि वो हमारे कर्मों के हिसाब किताब हैं, वो हम जानते हैं। बाबा ने हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाया है, त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों की समझ है, और इसीलिए हम राज को जानते हैं, और जो राज को जानने वाले हैं वो राजी रहते हैं। तो संतुष्टता इन अर्थों में, जो गीता में भी कहा कि कर्म पर आपका अधिकार है लेकिन उसके फल पर आपका अधिकार नहीं है। तो कर्म तो मुझे पूरी कर्मठता से करना है, जो भी बाबा ने हमें संपन्नता का लक्ष्य दिया है, संपूर्णता का लक्ष्य दिया है, बाप समान बनने का लक्ष्य दिया है, वो हमारा एक शुद्ध इच्छा है, हम ऐसा कह सकते हैं। ये इच्छा तो सभी को है ना, सभी ब्राह्मणों को ये इच्छा तो है कि हमें बाप समान बनना है। तो उसके लिए जो मुझे करना है वो हम जरूर करें, लेकिन अगर उसके अनुसार कुछ प्राप्तियों में हमें कम ज्यादा होता है तो उसमें हम संतुष्ट हैं। तो हम उसको सही अर्थों में समझते हैं। बाबा ने कहा कि हम बच्चों को तन मन धन संबंध चारों ही भाग्य 21 जन्म के लिए तो संपूर्ण मिलते हैं, और फिर आगे भी कल्प में भी हमारी ये प्राप्तियां चलती हैं। लास्ट जन्म है, लास्ट के कुछ जन्म दो चार ऐसे होते हैं जब थोड़ा बहुत प्राप्तियों में अंतर आता है, नहीं तो पूरा कल्प ही जो आज हमने भाग्य बनाया वो पूरा कल्प हमारे साथ चलता है। तो वो 21 जन्म में ये संगम युग भी आ जाता है, संगम युग आ जाता है ना, 20 जन्म सतयुग त्रेता के और ये 21वां जन्म है? तो सबसे पहले तो हमें संगम युग में प्राप्तियां हैं, और ये प्राप्तियां सतयुग और त्रेता युग की प्राप्तियों से भी श्रेष्ठ हैं। इसलिए बाबा कहता है ये जन्म हीरे तुल्य जन्म है, वो जन्म सोने तुल्य है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि तन से हम बहुत स्वस्थ हैं, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, अपने तन से हम संतुष्ट हैं, फिर मन से संतुष्ट हैं। अगर हम वर्तमान को देखते हैं तो लगता है कि नहीं, हम शायद पूरा संतुष्ट नहीं है, कहीं ना कहीं असंतुष्टता आ जाती है। धन के रीति से आज की दुनिया में सबसे बड़ी असंतुष्टता भौतिक प्राप्तियों की है, धन संपत्ति जिसे हम कहते हैं। सारी भागदौड़ किसके पीछे है, मुझे इससे ज्यादा मिल जाए। ज्यादातर असंतुष्टता तुलना करने से आती है, अपने आप में हम संतुष्ट होते हैं ना, मेरे पास इतना है, जितनी मेरी जरूरत है उतना मेरे पास है, उससे थोड़ा ज्यादा भी है ठीक है, मैं खुश हूँ, कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर मैंने दूसरे को देख लिया इसके पास मेरे से ज्यादा है, तब ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो दुनिया वालों की हालत ये है ना कि वो तो दूसरों को देखते हैं और इसीलिए उनको अपनी इच्छाओं पर लगाम नहीं है, कि जैसे ही उनको लगता है इसके पास मेरे से बड़ा मकान है, इसके पास मेरे से बड़ी गाड़ी है, इसके पास मेरे से अच्छा मॉडल का मोबाइल है, जो भी कह लो आप, अब ये तो मैं उदाहरण दे रही हूँ, मतलब जो भी कपड़े हैं, गहने हैं, सब हमारे स्थूल साधन जो भी हम प्रयोग करते हैं, दूसरों को देखते हैं और असंतुष्ट होते हैं। लेकिन हमारी प्राप्तियां इन हद की प्राप्तियों से बहुत ऊंची है, धन की भी अगर हम कहेंगे तो। भले हम उतने धनवान नहीं होंगे जितने दुनिया वाले धनवान हैं, धन के मामले में हो सकता है हम करोड़पति ना हो, लखपति को तो आजकल धनवान मानते ही नहीं है, लखपति तो गरीबी है। हम करोड़पति नहीं होंगे, अरबपति नहीं होंगे मानो, लेकिन फिर भी हम उस धन के पीछे अब नहीं भागते हैं। क्यों नहीं भागते हैं? दुनिया वालों जैसी भागदौड़ की जिंदगी अब हमारी नहीं रहती है, बल्कि हम और ही सोचते हैं कम हो जाए भागदौड़, ताकि हमें समय मिले कि हम अविनाशी कमाई करें। अविनाशी धन को हम महत्व देते हैं, लेकिन कौन सा धन है हमारे पास? ये ज्ञान धन। बाबा के जो खजाने हैं वो अविनाशी खजाने हैं, चाहे वो ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, गुणों का खजाना है। वो प्राप्तियां हमारी दुनिया में भी कभी कोई ऊंची प्राप्ति किसी को हो जाती है तो कम प्राप्ति की तरफ उसकी नजर नहीं होती, उसको पता है मुझे तो इससे अधिक है। जो भरपूर होते हैं वो दूसरों को नहीं देखते हैं, या दुनिया में भी कहते हैं कि जो रॉयल आत्माएं होती हैं उनकी छोटी मोटी चीजों पर नजर नहीं जाती है। तो हमें भी बाबा ने इतना रॉयल ऊंच श्रेष्ठ बनाया है, तो अभी उस धन की जो प्राप्तियां हैं वो शायद हमें उतनी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि उससे श्रेष्ठ प्राप्ति हमारे पास है, अविनाशी प्राप्ति हमारे पास है, तो वो धन है। यदि हमें उसकी स्मृति है तो, अगर हम विस्मृति में चले जाते हैं तो फिर वो हद की प्राप्तियां हमें भी खींचती हैं, ब्राह्मण आत्माओं को भी खींचती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खींचती हैं, लेकिन स्मृति में आएंगे तब भूल जाएंगे कि बाबा से हमें क्या मिला है। भगवान की ऊंची प्राप्तियों को छोड़ दिया तो फिर जैसे कहते हैं ना, हाईवे पर चल रहे थे, हाईवे पर चलते चलते कहां मुड़ गए? गलियों में। अब गलियों में मुड़ेंगे तो क्या होगा? कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। तो ऐसे ही फिर हम भी शुरू हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं, जब असंतुष्ट होते हैं मन में अनेक प्रश्न उठने लगते हैं, ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ही प्रश्नचित हुए हमारी संतुष्टता खत्म। बाबा कहता है प्रश्नचित माना प्रसन्नचित नहीं रह सकते, जो संतुष्ट हैं वही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। और इसीलिए बाबा ने कहा संगम युग मौज की जीवन है, खुशियों की जीवन है, अतीन्द्रिय सुख की जीवन है, क्योंकि प्राप्तियों की जीवन है। तब तक है जब तक हम प्रश्नचित नहीं हैं। अगर प्रश्नचित हो गए तो वो प्राप्तियां खत्म, महसूस नहीं होती हैं। फिर चौथी है संबंधों की प्राप्ति। संबंधों की प्राप्ति में भी हमारे सर्व संबंध बाबा के साथ हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, बाबा ही मेरा संसार है। अगर हम ये अनुभव करते हैं तो जो संबंधों में असंतुष्टता होती है वो हमें नहीं होती, क्योंकि हमारे संबंधों की संतुष्टि बाबा से है। हमारे संबंधों की संतुष्टि दुनिया के जो लौकिक अलौकिक संबंध है उनसे नहीं है। उनसे तो हमें मोह निकालना है, न्यारा होना है। उनके साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। ये बाबा ने हमें जिम्मेवारी दी है कि हम जिन भी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं, नमित हैं, उनकी सेवा करनी है, उनके प्रति शुभ भावना रखनी है, तो हम सदा संतुष्ट हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हम चले गए अन्य बातों में चले गए, जैसे कहा जो मेरे साथ में हमारे परिवार में रहते हैं उनकी कुछ कमियां हैं, उनके कुछ संस्कार हैं, वो हमारी बात नहीं मानते, या जो भी है गलती करते हैं, या हो सकता है कि वो हमसे ईर्ष्या करते हैं, कोई भी हो सकता है। आपसी संबंधों में जो व्यवहार में हम देखते हैं उसके कारण हम असंतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन इन सब के होते हुए भी मुझे संतुष्ट रहना है, तभी हम कहेंगे कि हम ज्ञानी हैं। ज्ञान और समझ हमारी तभी है जब ऐसे व्यक्तियों में, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी स्थितियों में भी हम संतुष्ट रह पाए, जो हमारे साथ अच्छे हैं, जिनके साथ हमारे संस्कार मिलते हैं, जिनकी हमारे प्रति स्नेह की भावना है, सहयोग की भावना है, उनके साथ संतुष्ट रहना। वो तो सभी रहते हैं, दुनिया में अज्ञानी लोग भी रहते हैं, ये कोई महानता तो नहीं है, इसको हम श्रेष्ठता तो नहीं कहेंगे, श्रेष्ठता हम किसे कहेंगे। ऐसी आत्माएं हैं तो भी मैं संतुष्ट हूं, और होती ही हैं, कोई ना कोई हमारे जीवन में ऐसी आत्माएं होती ही हैं जो हमें असंतुष्ट करेंगी, किसी ना किसी रूप में आपको वो कुछ ऐसा बोल देंगे या आपकी इंसल्ट कर देंगे चार लोगों के सामने, जिसको बाबा गाली देना कहता है। आज सीधे सीधे गाली तो नहीं देते लोग, लेकिन अलग अलग तरह से इंसल्ट करते हैं। तो ऐसी आत्मा के साथ भी मैं संतुष्ट रहूं कैसे संभव है, सभी को पता है, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। ज्ञानी है ना, तो समझ तो है, कैसे संतुष्ट रहे, रहते हैं या नहीं रहते वो अलग बात है। अगर ज्ञान याद है तो रह सकते हैं, अगर ज्ञान याद नहीं है, उस ज्ञान को अपना नहीं बनाया है मैंने, तो फिर भले ही हमने मुरली में रोज सुना है, रोज समझा है, बाबा तो हमें बताते ही हैं मुरली में, लेकिन फिर भी हम समय आने पर असंतुष्ट हो जाएंगे अन्य आत्माओं से, फिर हमें अपने आप पर यह आश्चर्य होगा, अच्छा अभी तक भी मेरे अंदर ये संस्कार है, अभी भी मेरा ये गुस्से का संस्कार इमर्ज हो जाता है, मुझे उनके ऊपर गुस्सा आ रहा है, क्यों मुझे गुस्सा आना चाहिए, तो बताइए कैसे संतुष्ट रहेंगे। ड्रामा का पार्ट था, हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, तो उसके पार्ट को मुझे साक्षी होकर देखना है, और मैं जितना सहयोग दे सकती हूँ उसे देना है, उसके प्रभाव में नहीं आना है मुझे। मुझे ये समझना है कि इस समय ये आत्मा वश में है, क्योंकि कोई ना कोई माया का प्रभाव है तभी आत्मा ऐसा करती है, तो अगर वो वश है तो मुझे उस पर रहम करना है, मुझे उसको शुभ भावना देनी है, उसके अवगुण को गुण में कैसे बदला जाए ना, वो अगर मैं कर सकती हूँ तो भले, और नहीं कर सकती हूँ तो न्यारी हो जाऊं। क्योंकि कई तरह की आत्माएं संपर्क में आ रही हैं, कोई मेरे से बड़े होंगे, चाहे अनुभव में, चाहे आयु में, चाहे पद में, किसी ना किसी रूप में मानो कोई मेरे से बड़े हैं, और उनके कारण मैं असंतुष्ट हो रही हूँ, तो उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकती, कह सकते हैं सिर्फ मन में शुभ भावना रख सकते हैं, तो ऐसे में मुझे साक्षी होकर के उनका पार्ट देखना है सिर्फ। लेकिन जो मेरे से छोटे हैं और उनको अगर मैं अगर गाइड कर सकती हूँ, हमारे कंट्रोल में होता है वो, कि हम उनको कह सकते हैं कि देखो ये गलत है, ऐसा आप करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन वो भी किस तरह से कहना है, कहने का भी तरीका होता है ना, एक होता है हम डांट कर कहेंगे, गुस्से से कहेंगे कि आप ऐसी गलती करते हो, और एक होता है हम प्यार से, रिस्पेक्ट से कहेंगे, जैसे बाबा समझाते थे बच्चों को, ऐसे नहीं बाबा शिक्षा नहीं देते, बाबा शिक्षा देते हैं ना, लेकिन बाबा की शिक्षा देने की विधि क्या है, स्वमान देकर के फिर शिक्षा देते हैं, पहले उसकी शक्ति को बढ़ाते हैं ताकि वो उसे ग्रहण कर पाए। तो अगर हमने भी उसको सम्मान देते हुए उसकी कोई विशेषताओं को बताते हुए फिर शिक्षा दी, हाँ देखो आप इतने अच्छे हो, आप ये सब तो करते हो ना, ये सब है आप में, लेकिन इतना सा और ये भी आप कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, तो उसको लगेगा हाँ सचमुच ये मेरे शुभ चिंतक है, और सीधा ही डांटने लग गए, ऐसा क्यों करते हो, कितनी बार समझा दिया फिर भी ऐसे ही करते हो, मानो मानेंगे वो नहीं मानेंगे। तो वो विधि जो बाबा ने हमें सिखाई है, उस विधि को हम प्रयोग करेंगे तो वो आत्मा भी संतुष्ट होगी और मैं भी संतुष्ट, मुझे भी खुशी होगी। और जो हमारे बराबर के हैं, उनके साथ भी हमें स्नेही सहयोगी बनकर रहना है। कई बराबर वालों को हम बात दे सकते हैं, कई बराबर वालों को हम नहीं भी दे सकते हैं, वो हमारी परख शक्ति और निर्णय शक्ति है, उस समय हमें उनको परखना और निर्णय लेना है कि कहना है या नहीं कहना है। तो यदि हमने समा लिया जो सहन करना समाना, बाबा कहता है संबंधों में जहां जहां इन शक्तियों की आवश्यकता है, यदि हम उसे यूज करते हैं, समय पर यूज करते हैं, तो हम भी संतुष्ट और वो भी संतुष्ट। तो संतुष्ट रहते भी हैं और संतुष्ट करते भी हैं। लेकिन जहां सहन करना है वहां सामना कर लिया, और जहां सामना करना है वहां सहन कर लिया। किसी की बात को मुझे समाना है, समाने की बजाय वर्णन कर दिया। हाँ, और जिस बात को हम मुझे विस्तार में लाना है उसको मैंने समा दिया। होता है ना, कई बार हमारे डिसीजन ही गलत हो जाते हैं तो फिर इसका प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ता है। और अगर हम ज्ञानी होकर के अगर गलतियां करते हैं तो लोगों को हमको माफ करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। हमारे लिए भी, हमारे सामने भी अगर कोई ज्ञानी आत्मा गलती करती है तो हमें माफ करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल लगता है। अज्ञानियों को तो हम समझते ही नहीं है ये गलती करते हैं, समझते हैं। हम सोचते हैं इनकी तो हमें सेवा करनी है, ये जो भी हैं जैसे भी हैं बहुत प्यार से उनको सहन कर लेंगे, उनको समा लेंगे, कैसे भी हैं उनके लिए बिल्कुल सही चलता है। ये जो ज्ञान है वो उनके लिए सही चलता है बिल्कुल, अज्ञानी आत्माओं के लिए। लेकिन ज्ञानी आत्माओं के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं इतने साल से ज्ञान सुन रहे हैं, मेरे से भी ज्यादा पुराने हैं ये तो इनकी धारणा तो मेरे से भी अच्छी होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर हम ये छोटी छोटी बातें हैं ज्ञान की, अगर हमने मनन करके उसे अपना बनाया है तो समय पर काम आती हैं। और बिल्कुल हमारी दृष्टि वृत्ति कृति से हमारे संपर्क में आने वाली आत्माएं संतुष्ट होती हैं। तो जैसे बाबा कहता है संतुष्ट मनी है, जो संतुष्ट मनिया हैं उनकी झलक और फलक वो ऐसी ही होती है कि वो दूसरों को भी संतुष्टता का अनुभव सहज कराते हैं। फिर मानो अगर हम तन की बात कर रहे थे, तन की बीमारी आती है, आती ही है संगम युग पर, तो आगे दो युगों में तो सदा के लिए निरोगी हो जाएंगे, लेकिन संगम युग में तो ये पेपर भी हमें देना है जो कभी कभी हमें असंतुष्ट करता है। हाँ, बीमारी आ गई तो हम सेवा कैसे करेंगे, कहीं हमें किसी से सेवा तो नहीं लेनी पड़ेगी। हाँ, बाबा से कहते हैं बाबा ऐसा बीमार मत करना कभी, हाँ, जो किसी से सेवा लेनी पड़े या हम किसी के आश्रित हो जाएं। तो भगवान तो गारंटी नहीं लेता है। हाँ, शिव बाबा कहता है मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तन की बीमारी के लिए तो संगम युग में मेडिकल बहुत एडवांस है। आज की दुनिया में डॉक्टरों के पास जाओ, ये छुट्टी है बाबा की, मना नहीं है, बीमारी आती है तुरंत इलाज कर लो। लेकिन तन बीमार है, मन बीमार नहीं होना चाहिए। आत्मा अगर स्वस्थ है तो तन बीमार भी हुआ, हिसाब किताब आया भी, तो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। और अगर आत्मा अस्वस्थ है, मन अस्वस्थ हो गया, तो हम कहते ही हैं आज की जो बीमारियां हैं वो 70% बीमारियां तो टेंशन के कारण ही होती हैं। तो टेंशन की जो बीमारियां हैं, चिंता की बीमारियां, तो हम तो बाबा के बच्चे बेफिक्र बादशाह हैं, बेगमपुर के बादशाह हैं, हमें कोई फिक्र नहीं होना चाहिए। अगर हम सचमुच बेफिक्र हैं, अगर हम सचमुच तनाव मुक्त हैं, तो जो 70% बीमारियां हैं उनसे हम बच जाते हैं। बाकी 30% तो होती हैं प्रकृति के कारण या इन्फेक्शंस के कारण। जो हम कहते हैं इन्फेक्शंस भी ज्यादा तब लगते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, और वो भी स्ट्रेस के कारण वीक होता है ऐसा ज्यादा मानते हैं। तो अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, इतना जल्दी हमें बीमारी हम पकड़ेंगे नहीं, तो उसमें भी फर्क आ जाता है। पर मानो अगर हो गई तो बाबा कहता है कि आप बीमारी कॉन्शियस नहीं बनो, सोल कॉन्शियस बनो। अगर हम बीमारी कॉन्शियस होते हैं, बार बार अगर हम बीमारी को सोचते हैं मुझे ये हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, कब ठीक होगा कि नहीं होगा, हाँ कहीं ऐसा तो नहीं। हाँ, कई बार कोई डॉक्टर डरा भी देते हैं कि आपके पास ज्यादा टाइम कोई वाह हंस रहे हैं तो मुझे भी हंसी आ रही। हाँ, कोई डॉक्टर जो है वो जल्दी डरा देते हैं मरीजों को, क्योंकि कई बीमारियां सचमुच ऐसी होती हैं। पर कई लोग बिल्कुल चमत्कार करते हैं, हाँ, डॉक्टर को भी झूठा सिद्ध कर देते हैं। ऐसे भी हैं दुनिया में, ऐसे एग्जाम्पल बहुत हैं। हमारे सामने ही ऐसे कई लोगों ने बहुत एग्जाम्पल सुनाए अपने। डॉक्टर ने कह दिया 3 महीना 6 महीना, हाँ, लेकिन आज 20 साल हो गए, हम तो अभी भी जिंदा हैं। तो कैसे झूठे साबित हो गए डॉक्टर? क्योंकि रूहानी शक्ति का प्रयोग किया। बीमारी कॉन्शियस नहीं बने, लेकिन बाबा से योग लगाया उस शक्ति से और दवाइयों से। दवा और दुआ दोनों काम करती है। ऐसे बाबा नहीं कहता दवा छोड़ दो, आप दवा मत लो, दवा भी लेना है, लेकिन दवा के साथ साथ अगर बाबा से हमारा योग, ज्वालामुखी योग जिसे हम कहते हैं, एकाग्रता वाला योग है, तो वो हमारे हिसाब किताब खत्म करता है, एक बात है ना। और दूसरी बात, जो बीमारी है उस पर अगर हमने सकाश दिया, वाइब्रेशन दिए, तो हमारी हीलिंग पावर बढ़ जाती है और ऐसी बीमारियां भी ठीक होती हैं, अगर हम सही विधि अपनाते हैं तो, जिसे बाबा मनसा सेवा कहते हैं। हम अपने आप को भी ठीक कर सकते हैं, ये मेरा खुद का भी अनुभव है। अगर ऐसे अनुभव में जाएंगे तो वो बहुत लंबा विस्तार हो जाएगा, पर एक अनुभव मैं आपको सुनाती हूँ जो मेरा नहीं है, किसी और का है। एक भाई ने सुनाया था हमको, जो बहुत पुराने बीके भाई हैं, उनको ब्रेन कैंसर हुआ। और ब्रेन कैंसर तो बहुत बड़ी बीमारी है और सचमुच ही डॉक्टर जवाब दे देते हैं उसमें। और उनका तो इस तरह का था, इनऑपरेबल, माना वो 5-6 था, एक ट्यूमर नहीं था, अंदर 5-6 ट्यूमर थे। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, अब जब तक है ना, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं योग करूं। अब मेरे को हंसी आ रही है टाइम की बात से। तो डॉक्टर ने मुझे कहा है 3 महीने है, तो 3 महीने में मुझे इतना योग करना है, हाँ, जो मैं कर्मातीत हो जाऊं। अब नेचुरली अब मेरे पास इतना ही टाइम है। तो वो आ गए और रोज रात को 2 बजे उठ करके बाबा के कमरे में योग करना शुरू किया। अब इतना जल्दी थोड़ी बीमारी ठीक होती है ना, बीमारी का भी टाइम होता है। और साथ साथ में उन्होंने थोड़ा नेचुरोपैथी, जो भी, अब एलोपैथी में तो इलाज ही नहीं है तो दवाई तो है ही नहीं, चलो फिर लोग ऑल्टरनेटिव पैथी ट्राई करते हैं, होम्योपैथी ले लो, नेचुरोपैथी कर लो, कुछ इस तरह से उन्होंने थोड़ा सा वो शुरू किया और साथ में योग शुरू किया। लेकिन थोड़ा असर आया बीमारी का, थोड़ा एक हाथ पांव, जैसे वो ऐसे होता है ब्रेन में ना, वो शरीर कमजोर होने लगता है, जिसको लकवा कहते हैं, पूरा लकवा नहीं हुआ लेकिन बोलने में थोड़ा फर्क, हाथ को यूज करने में फर्क, ऐसे फर्क आ गया 1-2 महीने में। तो बाबा मिलन चल रहा था, उन्होंने जैसे अनुभव सुनाया वो मैं सुना रही हूँ। तो बाबा मिलन चल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि चलो एक बार बाबा से भी मिल लेते हैं। तो यहाँ पांडव भवन में, ओम शांति भवन में बाबा मिलते थे, पुरानी बात है ये, वो बाबा को मिलने के लिए आए होंगे उस समय। तो जो सेंटर के भाई बहने थे वो चल भी नहीं सकते थे, सेंटर के भाई बहनों ने उठा करके उनको स्टेज पर ले गए, वो और बड़ी दादी थी, दादी प्रकाशमणि। सारी बात तो उनको बता दी थी कि दादी ऐसी ऐसी बात है और इनको बाबा से मिलवाना है, आखिरी बार ही शायद बाबा से मिलना होगा। तो दादी को भी बहुत रहम, दादी तो वैसे भी बहुत रहम दिल थी प्रकाशमणि दादी, तो दादी ने खास उनको बाबा को बताया सारा उनके बारे में, ऐसे ऐसे है बाबा और आप इनको कुछ मतलब वरदान दो जो भी। तो बाबा के सामने किसी ने फूल रखा था, रखते ना कोई बाबा को फूल देते हैं, तो गुलाब का फूल, बड़ा सा गुलाब का फूल बाबा के सामने स्टेज पर रखा हुआ था। तो बाबा ने वही फूल उठाया, जब वो सामने आए, दृष्टि दी बहुत पावरफुल और वो फूल उनके सिर पर घुमाया, ऐसे उन्होंने सुनाया। तो वहां से फिर वो नीचे उतरे स्टेज पर, तो उनको लगा कि मैं खड़ा हो सकता हूँ, खड़े हुए जैसे, तो खड़े हो गए ऐसे। तो उनको लगा कि ये तो बहुत शक्ति आ गई, क्योंकि नेचुरली बाबा ने दृष्टि दी तो पावर तो आ गई ना सोल में, तो वो पावर सीधी बॉडी में ट्रांसफर हुई, तो पैरों में खड़े होने की ताकत आ गई जो पहले खड़े नहीं हो पा रहे थे। और फिर बाद में जो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट था वो तो उन्होंने चालू रखा, और बाद में यहां से गए तो धीरे धीरे ठीक होने लगे। और अगले 6 महीने में तो जो हाथ में कमजोरी थी वो भी ठीक हो गई, बोलना भी ठीक हो गया। और एक उनका जो नेचुरोपैथी डॉक्टर था उसने कहा कि अब आप कभी सीटी स्कैन मत कराना, ना जो भी है बीमारी जैसे भी है अभी जा रही है, उसके लक्षणों से पता चल रहा है कि बीमारी जा रही है। अब 6 महीने की बजाय 1 साल तो हो गया, कहां डॉक्टर ने 3 महीना बोला, कहां 1 साल हो गया, तो इसका मतलब बीमारी खत्म तो हो ही रही है। और फिर कुछ समय के बाद तो वो बिल्कुल नॉर्मल पूरी एक्टिविटी में आ गए, और उसके बाद उन्होंने कभी सीटी स्कैन नहीं कराया। आज 20 साल हो गए वो भाई अभी भी हैं। फिर वो एक बार ना वो डॉक्टर वहां अहमदाबाद गए, तो वो डॉक्टर उनके सामने पड़ गए, मैं ना उस हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप मेरे पास आए थे, बोला हाँ डॉक्टर बिल्कुल सही याद मैं आया था लेकिन मैं जिंदा हूँ। तो ऐसे ऐसे मिरेकल्स भी होते हैं, लेकिन करने वाले की ताकत चाहिए, हाँ वो शक्ति चाहिए। तो मैंने कहा वो रूहानी शक्ति का हम प्रयोग करें कि ऐसी असाध्य बीमारी को भी उसने दवा और दुआ से जीत लिया, है ना। तो तन की बीमारी को भी खत्म करने की शक्ति बाबा ने हमें दी है। पर कईयों को क्या होता है, कहीं भी थोड़ा भी दर्द होगा ना तो शुरू हो जाएंगे, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। अगर हम बार बार बोलेंगे तो वो दर्द बढ़ने वाला है। वर्णन नहीं करना है बीमारी का कभी भी, ठीक है हो रहा है तो जिसको बतानी है, अगर डॉक्टर को बतानी ही पड़ेगी ना तभी तो दवाई मिलेगी, तो जिसको बतानी है उसको बता दें हम, जो उसका हल कर सकता है। बाकी हम ज्यादा ना बीमारी को अपने मन में लाएं और ना ही उसे हम दूसरों के सामने ज्यादा वर्णन करें। कई बार क्या होता है, मानो आपने किसी को कही ना, वो आपको ऐसी बात सुना देगा जो थोड़ा बहुत आप में शक्ति होगी वो भी गई, क्योंकि हर एक का एक्सपीरियंस बीमारी का अपना अपना होता है, क्योंकि हर एक की स्टेज अपनी अपनी होती है। अब उसने उस बीमारी को कैसे झेला वही तो हमें सुनाएंगे। अगर मानो कोई दुखी है तो वो क्या देने वाला है, इसलिए सुनाने का के लिए बाबा हमें मना करते हैं। सुनाना है तो बाबा को सुनाओ, नहीं तो डॉक्टर को सुनाओ, बस दो ही जगह है जहां हमें ये बात करनी है। तो तन का सुख हम संगम युग में भी अनुभव कर सकते हैं अगर हम रूहानी शक्ति का प्रयोग तन के लिए भी करते हैं। आपको डॉक्टर सतीश गुप्ता भी क्लास कराने वाले हैं, वो बहुत अच्छी तरह समझाते हैं हाँ कैसे हम मन से तन की बीमारी को दूर करते हैं, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट्स को ठीक करते रहे हैं। आप में से बहुत लोग जानते होंगे जो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज रिग्रेशन प्रोग्राम होता है, उसमें आज तक मैं समझती हूँ करीब 5,000 से ज्यादा हार्ट पेशेंट्स बिना बाईपास सर्जरी के ठीक हुए हैं। तो वो कौन सी शक्ति है, लाइफस्टाइल चेंज किया और अपने मन को बदला, मन को बाबत से लगाया और उसका योग का प्रयोग किया, तो वो बीमारियां भी ठीक हो गई। तो ये अनुभव तो है ना, प्रैक्टिकल अनुभव है हमारे सामने। तो तन मन धन संबंध जब चारों प्राप्तियां हैं, उन प्राप्तियों की स्मृति में रहना, स्मृति स्वरूप बनना है बाबा कहता है। अगर हम स्मृति स्वरूप हैं तभी हम संतुष्ट रहेंगे। फिर साथ साथ हमें सूक्ष्म प्राप्तियां भी हैं। सूक्ष्म प्राप्तियां दुनिया में लोग मानते हैं, नाम मान शान, अच्छा नाम होना चाहिए, हमारा मान होना चाहिए और शान होनी चाहिए, ऐसे ही समझते हैं। तो वो फिर स्थूल रीति से सोचते हैं, लेकिन बाबा ने हमें नाम मान शान सभी को दिया है, मिला है सभी को नाम मान शान। तो भगवान ने जब नाम मान शान दिया तो आत्माओं से मिलने वाले नाम मान शान कम हो गए, जैसे कहा ऊंची प्राप्ति हो गई तो कम प्राप्ति उसके आगे क्या है। बाबा ने नाम दिया है, हम कौन हैं, हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं, सबसे ऊंच श्रेष्ठ हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। वो ब्राह्मण आत्माएं जो आज भी जो नामधारी ब्राह्मण है, बाबा कहता है उस ब्राह्मण नाम से ही उनकी कमाई होती है। आज भी श्रेष्ठ कार्य में ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं ना, उन्हीं के उपस्थिति से ही सब कार्य संपन्न होते हैं। वो सच्चे ब्राह्मण हम हैं, वो तो सिर्फ अभी जन्म से और नाम से ब्राह्मण है, काम से वो ब्राह्मण रहे नहीं, लेकिन हम वो ऊंच श्रेष्ठ सच्चे ब्राह्मण हैं, ऐसा नाम तो बाबा ने हमें अभी दे दिया है। और फिर हमारा नाम भगवान के दिल पर है, लोग भगवान के नाम की माला जपते हैं, भक्त जो हैं वो किसकी माला जपते हैं और भगवान किसकी माला जपता है, बच्चों की माला जपता है। आजकल तो मुरलियां ही बाबा ऐसी चलाते हैं, बच्चों के दिल में कौन और मेरे दिल में कौन, कौन बसा है, कौन समाया है, कौन बाबा के दिल में समाया है। तो जो भगवान के दिल में समाये हैं, जिनका नाम स्वयं भगवान जपता है, वो तो अपने आप ही हमें फिर हद के नाम मान शान की क्या जरूरत है। अगर मानो किसी ने मेरा नाम नहीं भी लिया, चाहे हम ब्राह्मण परिवार में ईश्वरीय परिवार में आते हैं, सेवाओं में आते हैं, संगठन में आते हैं, खासकर सेवाओं के कारण ही ब्राह्मणों का संगठन होता है, या मानो लौकिक में भी कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसा उत्सव होता है मानो, तो उसमें हमारा नाम नहीं लिया गया। कई बार लोग जानबूझ के नहीं लेते हैं, कई बार भूल जाते हैं, दोनों ही बातें होती हैं। किया हमने बहुत कुछ, लेकिन जब नाम लेने की बारी आई तो हमें छोड़ दिया, तो हमें बहुत फील होता है, देखो हमने कितनी सेवा की या जो भी किया हमने, लेकिन फिर भी आना चाहिए फीलिंग, फिर भी मेरा नाम नहीं लिया, कहीं तो मेरा नाम लेना चाहिए। आपसे पूछ रहे हैं, ऐसा कोई करे तो फीलिंग आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम नाम के लिए काम नहीं कर रहे, हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हमारा भाग्य बन रहा है, हमें पता है जो भी सेवा हमने की वो भाग्य जमा हो रहा है। और अगर मेरे को नाम नहीं मिला तो डबल कमाई जमा हो गई, नाम मिल गया तो आधा मैंने यही खा लिया, वो तो समझा दिया ना भगवान ने। बाबा ने कहा अगर मानो किसी से हिसाब किताब के कारण, एक मुरली में बहुत स्पष्ट बाबा ने ये बात कही थी कि मानो किसी आत्मा से आपका हिसाब किताब है और उसके कारण आपका नाम नहीं आता, वो हमेशा ही आपको पीछे कर देते हैं, ऐसा होता है। तो बाबा ने कहा लेकिन विजय माला में आपका नाम पक्का है, बाबा के दिल से आपका नाम, मतलब बाबा के दिल पर आपका नाम उससे पहले है, ये बाप की गारंटी है। तो उसमें भी संतुष्ट कर दिया बाबा ने हमें, क्योंकि यही पेपर होते हैं जो हमें असंतुष्ट करते हैं। और अगर हम मान की बात करते हैं तो कितने स्वमान बाबा ने हमें दिए, ऐसे स्वमान दुनिया में किसी के नहीं। कितने भी ऊंचे ऊंचे पोजीशन वाले व्यक्ति हैं, किसी को भी ऐसे टाइटल मिलेंगे जैसे टाइटल बाबा ने हमें दिए हैं? कौन है हम, कौन है हम, याद दिलाया ना भगवान ने, कौन है हम? सर्वशक्तिवान है, पूज्य आत्मा है, महान आत्मा है, पवित्र आत्मा है, देवात्मा है, और पद्मा पदम भाग्यवान है, विश्व कल्याणकारी है, विश्व सेवाधारी है। देखो याद भी नहीं, आप बोल भी नहीं रहे, संतुष्ट बनिए, वो तो मैंने सुना दिया अभी। मास्टर सर्वशक्तिवान है, और इतने ज्यादा टाइटल हैं कि हमें याद भी नहीं है, है ना, ऐसे कहेंगे। तो अब बताइए दुनिया में किसी के ऐसे टाइटल हैं? किसी को इतना ऊंच श्रेष्ठ नजर से, इतनी ऊंची नजर से कौन देखता है? भगवान स्वयं हमें इतनी ऊंची नजर से देखते हैं, स्वयं भगवान हमें इतना सम्मान देते हैं। तो जिसको भगवान ने सम्मान दिया उसे हद की आत्माओं के सम्मान मिले या ना मिले, उससे फर्क पड़ना चाहिए? मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले तो और भी अच्छा, ऐसे कहेंगे? संतुष्टता का मतलब यही है कि मिल गया तो अच्छा और नहीं मिला तो और भी अच्छा, डबल अच्छा। क्योंकि जो गुप्त दान है, जो गुप्त है उसको महान प्राप्ति है, है ना। गुप्त की प्राप्ति जो त्याग बाबा कहता है, वो प्राप्ति उससे ज्यादा है जो प्रत्यक्ष है। तो उस सम्मान को हमें याद रखना है, जो बाबा ने हमें दिया है। फिर आत्माओं के मान में थोड़ा कमी पेशी हो भी गई, हो भी जाती है, कई बार किसी ने हमें पूछा, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने हमें प्यार दिया, किसी ने नहीं भी दिया, आपस में ही कई बार हो जाता है, ब्राह्मणों में ही कई बार निमित्त बहने हैं हमारी, निमित्त जो भी हैं, वो ही कई बार बहुत बिजी होते हैं तो उनके द्वारा ही कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। कई भाई बहनों को इसमें ही फीलिंग आ जाती है कि देखो बहन जी है पार्शलिटी करती है, उसको तो पूछती है और मुझे नहीं पूछती है, या उसको तो सेवा देती है मुझे, ये छोटी छोटी बातें होती हैं। तो सेवा की कमी नहीं है हमारे पास, अगर बहन जी से सेवा नहीं मिली तो भगवान ने हमें पूरा विश्व दे रखा है सेवा करने के लिए, बैठो मनसा सेवा करो, सारी दुनिया को सकाश दो, उसके लिए कोई रोक सकता है हमको? और सारी सेवाओं के माप से एक जैसे हैं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की सेवाएं, जो भी सेवा हम करें बाबा कहता है तीनों सेवाएं हमें करनी है, हर दिन तीनों ही सेवाएं हमें करनी है। तो हम कर्मणा तो करते ही हैं, वो तो हमारे स्वभाव में है, कर्म इंद्रियों से कर्म करना, कर्मणा सेवा तो स्वतः ही चलती रहती है। वाचा के लिए लोग थोड़ी मेहनत करते हैं और मनसा के लिए, मनसा सबसे आसान है, कहने में सबसे आसान है लेकिन करने में सबसे मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? करने में मुश्किल इसलिए है क्योंकि मन एकाग्र हो तब तो मनसा सेवा करेंगे, अगर मन एकाग्र नहीं है और जिस आत्मा के प्रति या जिन आत्माओं के प्रति आप मनसा सेवा करना चाहते हो उनके प्रति शुभ भावना, निस्वार्थ भाव होना चाहिए, देने की भावना होनी चाहिए, लेने की नहीं, स्वार्थ से नहीं, हाँ मैं इसकी मनसा सेवा करूं तो ये बदल जाए, ऐसे होता है ना कुछ स्वार्थ रख करके अगर हम कर रहे हैं वो मनसा सेवा फलेगी नहीं। आप करते रहेंगे, आप सोचेंगे इतना तो उनको योगदान दे रहे हैं लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा। अब क्यों नहीं हो रहा? विधि सही नहीं है, विधि सही नहीं है तो सिद्धि भी नहीं होने वाली है ना। तो मनसा सेवा भी करने के लिए मनसा शक्तिशाली चाहिए, मनसा शुद्ध चाहिए, मनसा श्रेष्ठ चाहिए, वही करें हम तो हम किसी को दोष नहीं देंगे किसी भी कारण से। जो संतुष्ट आत्मा है वो सदा निर्दोष और निस्वार्थ दृष्टि वृत्ति वाली होगी, वो ना तो ड्रामा को दोष देगी, ना बाबा को दोष देगी, ना किसी मनुष्य को यानी व्यक्ति को दोष देगी, ना परिस्थिति को, ना प्रकृति को कि इसके कारण ऐसा हो रहा है। क्यों नहीं देंगे दोष हम? क्योंकि हमें ज्ञान मिला है, तीनों कालों का ज्ञान परमात्मा ने हमें दिया है। तो ड्रामा को दोष नहीं दे सकते क्योंकि ड्रामा में बाबा ने ऐसा कुछ नहीं रखा जो हम नहीं कर सकते, चाहे जो भी पार्ट मिला है हम उस पार्ट में रहते हुए हम संतुष्ट रह सकते हैं, उस पार्ट में रहते हुए हम संपन्न बन सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम समर्पित हैं तो ही हम संपन्न बन सकते हैं, अगर हम ग्रस्त में हैं तो हम संपन्न नहीं बन सकते, ऐसी कोई लिमिट बाबा ने रखी है? हम ओम मंडली में आए हैं तो हम कर्मातीत बन सकते हैं और अब हम अभी ज्ञान में आए हैं तो कर्मातीत नहीं बन सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट रखी है बाबा ने? नहीं। तो इसीलिए ड्रामा को हम दोष नहीं दे सकते, जो भी मुझे पार्ट मिला है और जिस भी समय पर मुझे बाबा मिला है हर विधि बाबा ने हमें दी है कि हम संपन्न कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर पाएं। और बाबा से हम असंतुष्ट नहीं हो सकते, बाबा ने हमें दे दिया, अब लेने हम लेने वाले के ऊपर है कि हम बाबा से कितना लेते हैं, उसने मेरा ड्रामा ऐसा क्यों बनाया, ऐसा हम कह सकते हैं बाबा को? फिर प्रकृति है, प्रकृति को तो मुझे सतो प्रधान बनाना है, हम प्रकृति को दोष नहीं दे सकते कि वातावरण ऐसा है, वायुमंडल ऐसा है, मैं क्या करूं, उसका प्रभाव मेरे ऊपर आ जाता है, नहीं, वायुमंडल को मुझे बदलना है, मैं प्रकृति को पावन बनाने वाली आत्मा हूं तो उसे भी हमें दोष नहीं देना है। तो हम अगर संतुष्ट रहते हैं तो फिर सदा ही हम प्रसन्न हैं, उसकी निशानी है ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी संतुष्टता है, तो तो पर्सनालिटी प्रसन्नता है, और जो संतुष्ट और प्रसन्न होंगे वो स्वतः ही सेवा करेंगे, उनकी सूरत और सीरत सेवा करने वाली होती। बाबा कहता है वो चैतन्य म्यूजियम होते हैं। तो संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। संतुष्टता का गुण, जो संतुष्ट मनी आत्माएं हैं वो बाबा के सबसे प्रिय हैं, सबसे समीप आत्माएं। ठीक है, ओम शांति।
आदरणीय दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भी हाथ हिलाकर आदरणीय दीदी जी का धन्यवाद देंगे। बहुत सुंदर ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी संतुष्टता पर आपने हमको समझाया, तो जरूर हम इस पर अभ्यास करेंगे।